पूरी सूरत अनाम पे अगर हम एक नज़र में डालें तो हमने 17 चीज़ें सीखी। जल्दी से लिख लें ताकि आपके पास इस सूरत के नाते से भी एक छोटी सी लिस्ट बन जाएगी जो बाद में इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। नंबर एक, अल्लाह का हमसर किसी को नहीं बनाना। आखरत के आने में शक नहीं करना। दावत हक से मुंह नहीं मोड़ना। दावत हक का मजाक नहीं उड़ाना। अल्लाह की निशानियों के मुतालबे नहीं करने। अल्लाह ताला पर बहतान नहीं बांधना। आखरत के लिए जल्दी नहीं करनी। और वही के नाजिल यानी मुझ पे वही आती है इसका दावा नहीं करना, झूठी नबूवत का दावा नहीं करना। किताब की कुछ बातों को जाहिर करना और कुछ को छुपाना नहीं। चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में नहीं आना। बदगुमानियां और क्यास आराइयां नहीं करनी। और इल्म के बगैर गुमराह कुन बातें नहीं करनी। हराम और हलाल के खुद साख्ता फतवे अल्लाह से मंसूब नहीं करने। इसी तरह इस पूरी सूरत में अल्लाह ताला ने 9 अहकामात दिए। ये जो अभी हमने देखे ना, ये क्या थे? शैतानी और मुनाफकाना और काफिराना रवैये। अल्लाह ताला ने जिन 9 बातों का हुक्म दिया है वो कौन सी हैं? नंबर एक, जिन जानवरों पर सिर्फ अल्लाह का नाम हो उन्हें खाना है। अल्लाह के दिए हुए रिस्क पर हलाल और हराम के फतवे नहीं लगाने। शिर्क ना करो। वालदैन से नेक सलूक करो। किसी को कत्ल ना करो। इंसाफ के साथ पूरे का पूरा नापो। यतीम के माल के करीब न जाओ। और बात इंसाफ की करो। और आखिरी बात, अल्लाह के अहद को पूरा करो। अल्लाह ताला हमें इसमें से एक एक बात पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अकाइयां धाइयों पे गालिब कैसे? अकाई क्या कहते हैं? एक, सिंगल। गुना लिखते हैं तो इकाई है, एक लिखा गया। नेकी लिखते हैं तो दहाई, 10, 10 है ना, 10। तो अकाइयां क्या है? गुना। और धाइयां क्या है? नेकियां। समझ में आ रहा है कि नेकी करते हैं तो एक ही जगह 10 लिखते हैं। इसके बावजूद आपने फरमाया कि उसकी अकाइयां उसकी धाइयों पे गालिब आ गई, यानी उसके गुना उसकी नेकियों पे गालिब आ गए। ठीक है। तो अच्छा, आज की किताब भी बता दूं, ये जो हमने आपको आपको दिया था उनवान नबी पाक का वसीयत नामा, आयत नंबर 151 और 152 के नाते से रुकू नंबर 6 में है। आज की किताब जो हमारे पास है वो क्या है? इस्लामी आदाब। इसके अंदर बड़ी खूबसूरत तरीके से आप देखेंगे कि टॉपिक बांध के, अगर आप लोगों के पास है तो आप खोल के भी देख सकते हैं कि मुख्तलिफ तरीके से अदब सिखाए गए हैं। यानी जिस तरह आज इसमें दीन का एक पूरा एक स्ट्रेच था, तो इसमें अकीदे से शुरू करके और फिर मामलात और खाने पीने के तरीके, बात करने, अदब सिखाए गए। इस किताब को पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है कि आप अपने बच्चों के साथ शेयर करें। बहुत खूबसूरत तरीके से तरबिया की एक किताब है। अगर आज पूरी ना भी कर सकें तो इसके लिए आपको रुख्सत है कि आप लोग बाद में, यानी हर दिन दो दो तीन तीन सबक पढ़ते हुए रमज़ान के साथ चलाते जाएं और एक दिन एक अदब के साथ बात कर लें। और वही बात है कि ऐसे वक्त में इसका मुतालिया करें कि जब बच्चे आपके पास हों। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये एक किताब है जो आपके पास इसलिए भेजी गई कि आप इसके ज़रिए से डराएं, सो आपके दिल में इससे बिल्कुल तंगी न हो। और नसीहत है ईमान वालों के लिए, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, तुम लोग इसका इत्तबा करो जो तुम्हारे रब की तरफ से आई है। और अल्लाह को छोड़कर मन घड़त सरपरस्तों की इत्तेबा मत करो। तुम लोग बहुत ही कम नसीहत पकड़ते हो और बहुत सी बस्तियों को हमने तबाह कर दिया और इन पर हमारा अजाब रात के वक्त पहुंचा, ऐसी हालत में कि वो दोपहर के वक्त आराम में थे। सो जिस वक्त इन पर हमारा अजाब आया उस वक्त उनके मुंह से सिवाय इसके कोई और बात न निकली कि इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, बेशक हम ही जालिम थे। फिर हम इन लोगों से ज़रूर पूछेंगे जिनके पास पैगंबर भेजे गए थे और हम पैगंबरों से भी ज़रूर पूछेंगे। फिर हम चूके पूरी खबर रखते हैं और इनके रूबरू बयान कर देंगे कि हम कुछ बेखबर न थे। वल वज़्नु यौम इज़िन अल-हक़ फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़ौलाइक हुमुल मुफ़्लिहून। और इस रोज़ वज़न भी बरहक है, फिर जिस शख्स का पल्ला भारी होगा ऐसे ही लोग कामयाब होंगे और जिस शख्स का पल्ला हल्का होगा बस ये हैं वो लोग जिन्होंने अपना नुकसान कर लिया बसबब इसके कि वो हमारी आयतों के साथ जुल्म करते थे। वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्द वजअलना लकुम फीहा मआयिश क़लीलम मा तशकुरून। और बेशक हमने तुमको ज़मीन में रहने की जगह दी, सच है ना, और हमने तुम्हारे लिए इसमें सामान्य रिस्क पैदा किया, तुम लोग बहुत ही कम शुक्र करते हो। रुकू नंबर 8, इसका उन्वान क्या है, पकड़ आने पर। बड़ी डराने वाली आयतें हैं इस रुकू में, खौफ आता पढ़ते हुए भी इसका तर्जमा। बहरहाल इब्तदा में इस रुकू में शुरू में कुरान पाक के नाजिल होने के मकासद बताए गए। क्या मकसद है? नंबर 1, मुनकरीन को डराना, ईमान वालों को याद दहानी। हुक्म क्या हमें दिया कि इस किताब की पैरवी करो, अल्लाह को छोड़कर दूसरों की पैरवी न करो। और सबसे डराने वाली बात जो किताब के नाते से थी वो क्या थी कि क्यामत के दिन रसूलों की भी बाज़पुरस होगी कि क्या उन्होंने किताब का पैगाम पहुंचा दिया। ज़रा सोचिए, फिर दूसरों की क्यों ना होगी। और ये भी पूछा जाएगा कि तुम्हें जवाब क्या मिला। इसके बाद अगली आयतों में अल्लाह ताला ने छुटलाने वालों का अंजाम बताया। क्या दुनिया में क्या हुआ, इन पे अजाब आया। कब आया? जब रात को गफलत में सो रहे थे या दोपहर के वक्त कैलूला कर रहे थे। जब अजाब आया तो इनकी जुबान पे क्या कलमा था, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, वाकई हम जालिम थे। मान गए, दुनिया में अजाब से पहले जिस बात को नहीं मानते थे अब मान गए। क़यामत के दिन क्या होगा, जिसके पलड़े भारी होंगे वो तो बच जाएगा, यानी अजाब में अगर कुछ लोग ऐसे भी चले गए जो नेक थे क़यामत के दिन उनके साथ अच्छा मामला होगा, लेकिन वो लोग जिनके अमल बुरे थे दुनिया का अजाब उनको किफ़ायत नहीं करेगा बल्कि कल क़यामत के दिन भी खसारों में रहेंगे। अल्लाह ताला ने आखिर में अपनी नेमत का जिक्र कर दिया कि लोगों सोच समझ के इस दुनिया पे रहो, हमने तुम्हें जगह दी है। मैं जब इस आयत का तर्जमा पढ़ रही थी ना कि वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्थ, और बेशक हमने तुमको ज़मीन पर रहने की जगह दी, तो मुझे क्या महसूस हो रहा था कि अल्लाह ताला अपना ये एहसान बता रहे हैं कि तुम डिज़र्व नहीं करते, शुक्र करो तुम्हें ज़मीन पर ठहरने की जगह दी है, छत दी हुई है तुम्हें, तुम अल्लाह का शुक्र करो। बिल्कुल दुनिया में जैसे किसी शख्स पे हम नाराज़ हों, गुस्से में आए, तो फिर उसको धमकी देते हैं कि शुक्र करो कि तुम्हें मैं कुछ कह नहीं रही, तुम्हें इधर बैठने की इजाज़त दी हुई है। पूरा रुकू जो है ये इंसान को गफलत से निकाल के शऊर की तरफ लाता है कि दुनिया में जो लोग इस किताब के साथ बेरुखी करते हैं वो 5 मकासद जो इसके हैं उसको पूरा नहीं करते। फिर जब दुनिया में अल्लाह का अजाब आता है तो उनकी हालत क्या होती है, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। तो कितनी ज़रूरत है इंसान को हर वक्त ये पढ़ने की कि ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जो लोग जिंदगी में इस बात का इकरार कर लेते हैं ना, तो मौत के वक्त फिर वो इस हालत में नहीं होंगे। उस वक्त कहना कुछ फ़ायदा नहीं दे रहा। मैं जब इसको पढ़ती थी तो मेरे जहन में जलजले के मंजर और हैरिकेन और जो कुछ आप लोग भी देखते हैं उसकी चीज़ें जहन में आ रही थी। एक मेरे पास यानी एक ऐसी फिल्म आई, फिल्म से मेरा ये है कि सीडी पे है मेरे पास, कि जो जलजला आया था पाकिस्तान में उसकी झलकियां हैं उसमें। कभी मौका पड़ा तो आपको दिखाऊंगी। यानी यकीन करें कि मैं थोड़ी सी देखी फिर उसके बाद मैं नहीं देख सकी। पूरी लाइव तस्वीरें लोगों के ऊपर, इमारतें गिरती हुई, फिर कहीं हाथ गिरा हुआ है, कहीं खून, गर्दन कट के टूटी हुई है, कहीं खून बिखरा हुआ है कुछ। और आप देखिए कि जो सारी चीज़ है ना इसमें देखने की, वो क्या है कि अजाब का बात है गफलत की हालत में। क्यों? ताकि तौबा ना कर सको। वही उस वक्त बचते हैं जो पहले से तौबा की होती है। और अमूमन देख लें कि कभी भी कोई आसमानी आफत टूटती है तो या रात को टूटती है या बिल्कुल फजर के करीब। और आगे पढ़ेंगे अंबिया कराम की कौमों पे जो अजाब है, सब पे सुबह के वक्त में बिल्कुल गफलत के परतों में, ताकि अल्लाह ताला बताता है कि एक शौरी गफलत तो थी, अब इस पकड़ के आने पर भी तुम अपने आप को बचा के रखो। हमने अपने अमल के लिए इसमें क्या सीखा कि हमने अल्लाह की पकड़ के आने से पहले अपने गुनाहों का एतराफ करना है और इस किताब पे अमल करना है। इस किताब से दिल में तंगी नहीं लानी, इसके हुक्मों को बोझल नहीं समझना और अल्लाह के अजाबों से बचने की दुआ करनी है। एक दुआ बड़ी खूबसूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत से हम तक पहुंचती है। आपने फरमाया कि अल्लाहुम्मा ला तक्तुलना बिगज़बिका वला तुहलिकना बिअज़ाबिका वआफिना क़ब्ल ज़ालिका। ए अल्लाह, अपने गुस्से के साथ हमें कत्ल ना करना और अपने अजाब के साथ हलाक ना करना और उसके आने से पहले हमें आफियत दे देना। अरबी ना भी आए तो उर्दू ज़रूर पढ़ के ये दुआ याद करते रहने की कोशिश करें, ताकि ऐसा ना हो कि अल्लाह की कोई पकड़ आए तो इंसान फंस जाए। क्योंकि नबी सल्लम ने फरमाया कि गेहूं के साथ घुन भी, यानी एक हदीस का मफहूम है जो हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि जब गेहूं पिसता है तो साथ घुन भी पिस जाता है। पूछा गया था आपसे कि जब अजाब आते हैं तो कुछ लोग नेक भी तो होते हैं। आपने फरमाया हाँ, लेकिन क़यामत के दिन वो अपने नेक अमलों पे उठेंगे। यही था वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक। कितना तकलीफ दे मंजर है ना। एक तो हम दुनिया में अजाब की शक्लों की सूरत में जो देखते हैं उस पर भी तरस आता है, लेकिन जरा सोचिए कि ये अजाब किफायत नहीं करेगा, गुना फिर मौजूद है। अमूमन तो क्या होता है कि बंदा मोमिन पे कोई तकलीफ आती है तो कफारा बन जाती है उसके गुनाहों का, लेकिन जब किसी कौम पे अजाब आता है तो वो गुनाह कफारा नहीं होता बल्कि आखिरत की सजा फिर भी उसके बाद पूछी जाएगी। चलिए अल्लाह ताला से डरते हुए अगले रुकू को शुरू करते हैं। वलकद खलकनाकुम थुम्मा सव्वरनाकुम थुम्मा कुलना लिलमलाइकति इस्जुदू लिआदम فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين। और हमने तुमको पैदा किया, फिर हम ही ने तुम्हारी सूरत बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, बस सबने सजदा किया बजुज इबलीस के, वो सजदा करने वालों में शामिल न हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया तू जो सजदा नहीं करता तो तुझको इससे कौन सी चीज रोकती है, जबकि मैं तुझको सजदे का हुक्म दे चुका। कहने लगा मैं इससे बेहतर हूँ, आपने मुझको आग से पैदा किया है और इसको आपने मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला ने फरमाया आसमान से उतर, तुझको कोई हक हासिल नहीं कि तू आसमान में रहकर तकब्बुर करे, सो निकल, बेशक तू जलीलों में से है। इसने कहा कि मुझको मोहलत दीजिए क़यामत के दिन तक। قال إنك من المنظرين। अल्लाह ताला ने फरमाया तुझको मोहलत दी गई, اس نے کہا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا. انداز دیکھیے, بسبب اس کے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا. میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا, پھر ان پر حملہ کروں گا, ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کی دائیں جانب سے اور ان کی بائیں جانب سے بھی, اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا, جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور ہم نے حکم دیا, اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو, پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما, پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں دونوں کے رو برو بے پردہ کر دے, اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے کسی اور سبب سے منع نہیں فرمایا مگر اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ. اور ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی کہ یقین جانیے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. پس وہ ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا, پس دونوں نے جب درخت کو چکھا تو دونوں کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئیں, اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے. اور ان کے رب نے ان کو پکارا, کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کرا تھا؟ کیا یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دونوں نے کہا, اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قال اخبتوا بعدکم لبعد عدو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے, اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے ایک خاص وقت تک. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون, فرمایا تم کو وہیں زندگی بسر کرنا ہے اور وہیں مرنا ہے اور پھر اسی میں سے نکالے جاؤ گے. رکوع نمبر 9, اس کا عنوان کیا ہے؟ شیطان کے ہتھ کنڈے. اللہ تعالیٰ نے اس میں آدم اور شیطان کا قصہ ہمارے سامنے رکھا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا, ابلیس نے تکبر کی وجہ سے انکار کیا, پھر مہلت مانگی, پھر شیطان نے انسانیت کے خلاف کوششیں کس طرح کی؟ پہلی بات یہ دعویٰ کیا کہ سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا لوگوں کی گھات میں, پھر ان کے دائیں طرف سے آؤں گا, بائیں طرف سے آؤں گا, آگے سے اور پیچھے سے آؤں گا. اگلی بات کا اظہار جو شیطان نے کیا وہ کیا تھا کہ تو اکثر کو ناشکرا پائے گا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے تم بھی جنت سے نکل جاؤ اور جو تمہاری پیروی کریں گے ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر اس کے بعد آدم اور حوا کو جنت میں ٹھہرایا, ایک درخت سے منع کیا. شیطان نے دھوکے سے آدم علیہ السلام کو پھل چکھایا, حوا کو بھی. نتیجہ کیا ہوا کہ دونوں کے جسم سے لباس اتر گئے, شرم گاہیں کھل گئیں. یعنی شیطان نے ایک دھوکہ تو دے دیا لیکن دوسرے دھوکہ نہ دے سکا کہ شرم گاہوں کو کھلا ہی رہنے دے. یعنی ان کی فطرت غالب آ گئی, اپنے گناہ کا احساس ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا لیکن حکم یہ دیا کہ اب تمہیں اس دنیا ہی میں رہنا ہے, یہاں سے हिदायत की बात को सुनने मानने के बाद आओगे तो फिर जिसने अच्छे काम किए होंगे उसको जन्नत मिलेगी। ये खुलासा था इस पूरे रुकू का। इसके अंदर कुछ शैतानी रवैयों का जिक्र है, उसको नोट कर लीजिए। शैतान किस किस हथकंडे से इंसान को हिदायत की तरफ से दूर करता है। नंबर एक, तौहीद का इनकार करके, यानी कुफर और शिर्क में मुबतला करता है। अगर कोई बंदा उससे बच जाए तो फिर दूसरे दर्जे पे क्या करवाता है, बिदात, दीन के अंदर नई नई बातें शुरू करवाता है। जब इंसान उससे भी बच जाता है कभी, तो फिर उससे गुनाहे कबीरा करवाता है। अगर उसमें नाकाम हो जाए तो फिर सगीरा गुना करवाता है, छोटे गुना। उसका अगला हटकंडा क्या होता है, हीलो हुज्जत करवाना, यानी दीन के कामों में सुस्ती डलवाना और हुज्जतें कायम करना, ऐसे क्या और वैसे क्या, पर्दा तो दिल का है और हम तो ऐसे और तुम तो ऐसे। अगला हथकंडा उसका क्या है, निसियान, भुलवा देता है, अल्लाह का हुक्म भुलवा देता है। नियत करते हैं आप नेकी की, बाद में भूल जाते हैं, ओ याद ही नहीं रहा, ये भी शैतान की तरफ से होता है। फिर छठा हथकंडा उसका क्या है, शराकत, अल्लाह के साथ साथ किसी दूसरे को शरीक कराता है, यानी खुद शरीक हो जाता है। जैसे बिस्मिल्लाह पढ़ते वक्त अगर खाना खाते हुए बिस्मिल्लाह ना पढ़ें तो उस खाने में शैतान शामिल हो जाता है। फिर इंसान को गुमराही में डालता है, सीधा रास्ते पे इंसान जाता होता है, एकदम उसको गलत एग्जिट दिलवा देता है। अगला हथकंडा इसका क्या है, मायूसी, ऐसे हालात पैदा कर देता है कि इंसान मायूस हो के अल्लाह ताला से दूर हो जाए। फिर नवा हथकंडा क्या है, वसवसे और खौफ दिलाता है, उल्टे सीधे वसवसे आते हैं, बस यही कर देगा, तुम्हारी कौन सी नेकी कबूल होनी है, खाम का तुम कर रही हो, छोड़ो, सबको तो पता चल रहा है तुम तो बस, तुम्हारी नेकियां कबूल ही नहीं है, छोड़ो। फिर ये कहना, अच्छा देखो कोई फायदा तो किसी को हो नहीं रहा तुम्हारी इस बात से, अच्छा चलो जरूरत क्या थी इस बात के करने की। यानी बड़ी बड़ी नेकियों को इंसान के दिल में वसवसे डाल के मशकूक कर देता है। और दसवां हथकंडा क्या है, झूठी उम्मीदें। इंशाल्लाह जब बाद में तफसील से ये रुकू पढ़ेंगे तो मैं आपको इसी में पॉइंट्स में लिखाऊंगी कि इन आयात में बड़े खूबसूरत तरीके से इन सारी चीज़ों का जिक्र है जो मैंने अपने लफ्ज़ों में लिखाई। अब ये सुन के आप परेशान हो गए होंगे, करें क्या, दुश्मन बड़ा ख़तरनाक है, बड़ा चौका चौबंद है, तो करना क्या है, तो लिख लीजिए शैतानी हथकंडों से कैसे बचना है। आठ चीज़ें हैं उसकी। नंबर एक, अल्लाह की पनाह में आना है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। नंबर दो, कुरान पाक की तिलावत, क्योंकि शैतान भाग जाता है। तीसरी चीज खास तौर पे आयतुल कुर्सी। चौथी चीज मुअव्वज़तैन, यानी आखिरी दो कुल, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास और कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक की सूरतें। पांचवी चीज है सुबह शाम के मसनून अज़कार। छठी चीज क्या है कि इसके हथकंडों से चौकन्ना रहा जाए, गाफिल इंसान को ये बड़ी जल्दी पकड़ लेता है। सातवीं चीज क्या है, जिक्र अल्लाह का, जब इंसान जिक्र करता है तो शैतान उसके पास फटक नहीं सकता। अगली चीज क्या है, नेक दोस्तों का साथ, अच्छी कंपनी शैतान के हमलों से इंसान को दूर कर बचा लेती है। इसी तरह फिर दीन की महफिलें, मस्जिद का साथ। फिर इसी तरह शैतानी हथकंडों से बचने का एक और तरीका क्या है, साफ सुथरा रहना, क्योंकि साफ माहौल में शैतान पनपता नहीं। फिर अगला हथकंडा क्या है, अपने जिस्म के गैर जरूरी जो बाल हैं या जो ऐसी चीजें हैं उसकी सफाई। हो सकता है आप में से किसी को ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये इतनी बड़ी हकीकत है कि आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते। कभी आपकी नमाजों में खुशु कम होने लगे या दिल में वसवसे या सुस्ती है, तो आप जरूर देखें कि आपकी जरूर कोई ऐसी गंदगी आपके जिस्म के साथ है जिसको उतारना लाजिम है। तभी नबी सल्लम ने फरमाया कि 40 दिन के बाद अपने जिस्म के गैर जरूरी बाल, यानी एक हद है उससे पहले उतार सकते हैं। इसी तरह अगली चीज लिखी है, लंबे नाखून, क्योंकि एक रिवायत मिलती है कि शैतान लंबे नाखूनों के जरिए जिस्म में दाखिल होता है। انشاءاللہ تفصیلات تو بعد میں ہوں گی. ایک دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہم انی اعوذ بکا من ہمزات الشیطان. اے اللہ میں شیطان کے وسوسوں سے. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ. اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں, تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ دعا آگے آئے گی, قرآن ہی کی دعا ہے, انشاءاللہ وہاں آپ اس کو یاد کر لیجئے گا. تو لہٰذا شیطان دشمن ہے, بچنا ہے اس سے کیونکہ وہ پیچھے لگا ہے. اگلا رکوع دیکھتے ہیں. اپنا محاسبہ کر لیں ذرا تھوڑا سا اس پہ, کیا بس ایک ہی لفظ لکھ لیں, کیا میں شیطان کو واقعی دشمن سمجھتی ہوں؟ ہم تو اس کو گلے لگاتے ہیں, یقین کریں, کیونکہ جو دشمن ہوتا ہے اس پہ اتنا اعتماد تو بندہ نہیں کر سکتا کہ اس کی باتوں کو مان مان کے رب کو ناراض کر دے. چلیے آیت نمبر 26 سے دیکھیے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے آدم علیہ السلام کی اولاد, کس کو پکارا ہے؟ ہمیں پکارا ہے. ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرم گاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے, اور تقویٰ کا لباس یہ تو سب سے بڑھ کر ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں. اے اولاد آدم, شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کروا دیا, ایسی حالت میں کہ ان کا لباس اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرم گاہیں دکھائیں. وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے. ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے. اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہی بتایا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا. کیا اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جس کی تم کوئی سنت نہیں رکھتے؟ قل امر ربی بالقسط واقیم وجوہکم عند کل مسجد. آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا, اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھو. تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہو گئے. فریقن ہدا و فریقن حق علیہم الدلالہ. بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. اے اولاد آدم, تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ پیو اور حد سے مت نکلو. بے شک حد سے نکل جانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. رکوع نمبر 10, اس کا عنوان کیا ہے؟ شیطان لباس کا دشمن. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین باتیں بتائیں. پورا رکوع جو ہے اس کا تھیم کیا ہے؟ لباس اور اس کی اہمیت, اس کے آداب. ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ میں نے لباس اتارا. کیوں؟ تاکہ تمہارے قابل شرم حصوں کو چھپائے, جسم کی حفاظت ہو, خوبصورتی کا ذریعہ ہو. لباس اللہ کی نشانی ہے اور واقعی بڑی پیاری نشانی ہے. بہترین لباس تقوی کا لباس ہے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم سے لباس اتروا دے. پھر اس کے بعد شیطان کے تین فتنوں کا ذکر ہوا. کون کون سے؟ کیا پہلا فتنہ ہے اس کا؟ اریانی. پھر اس کے بعد بے حیائی, اور پھر خدا خوفی کو نظر انداز کرنا. کیسے بچیں؟ शैतान के इन वसवसों से बचने की सात चीज़ें हमें इस रुकू में मिली जो बहुत फ़ायदेमंद हैं। नंबर एक, हर इबादत में अपना रुख ठीक रखो, यानी शौरी इबादत करो, सिर्फ अल्लाह ही को पुकारो, दीन को इसके लिए खालिस कर दो, दोबारा पैदा होने को याद रखो, शरीयत और शैतान को सरपरस्त न बनाओ, हर इबादत के मौके पर अपनी जीनत से आरास्ता हो जाओ, यानी गंदे मैले कुचैले कपड़ों में इबादत ना करो। और आखिरी बात, खाओ पियो लेकिन हद से तजावुज ना करो। हमारे लिए इस रुकू में अमल की बातें क्या हैं? नंबर एक, हमने लिबास को अल्लाह की नेमत समझना है, हमने लिबास से जिस्म के हिस्सों को छुपाना है, खूबसूरती भी हासिल करनी है, हिफाजत भी करनी है जिस्म की, और तकवा का लिबास पहनने की कोशिश करनी है। अगली अमल की बात क्या है? शैतान के वार से चुकन्ना रहना है, क्योंकि उसने हमारे माँ बाप को जन्नत से निकलवा दिया था। फिर हमने अपने आप को अल्लाह के लिए खालिस करना है, मरने के बाद जीने का यकीन रखना है, शैतान से दोस्ती नहीं करनी, बाप दादा का नाम लेकर बुरी रसूमात को इख्तियार नहीं करना। मुश्रिकीन मक्का की एक आदत थी कि जब हरम में तवाफ के लिए जाते तो बरहना हो जाते, बिल्कुल मादरजात नंगे। क्यों? कहते थे कि जिन कपड़ों में हम गुनाह करते हैं वो कपड़े हम इबादत के वक्त नहीं पहन सकते। औरतें और मर्द बिल्कुल बरहना होते। अल्लाह ताला ने आयतें उतार दी कि खुजू जीनत कुम इंद कुल्ली मस्जिद, के लिबास पहन के इबादत करो, खुद साख्ता बातें मन घड़त बातें करके दीन का हुलिया ना बिगाड़ो। और उसके बाद फिर हमने इससे क्या बात सीखी कि हमने यानी बेसोचे समझे तकलीद नहीं करनी और उरियानी और बेहयाई से बचना है। पूरे रुकू के अंदर जो थीम था वो लिबास था, तो मैं चाहूंगी कि लिबास के बारे में इस्लाम क्या कहता है थोड़े से पॉइंट्स आपको दे दूं, ताकि बात सुनने के बाद फिर समझनी आसान हो जाए। आप देखिए, किसी आयत को अगर हम देखें तो लिबास की पहली शर्त क्या है? कि वो सतर को छुपाए। दो लफ्ज हैं हदीस में, क्या? कि वह साफ ना हो और शफाफ ना हो। वसाफ कहते हैं वसफ बयान करने वाला, इतना टाइट ना हो कि जिस्म के वसफ दिखें, हर हिस्सा हर कट अलग से अलग दिखे। और शफाफ क्या है? कि सी थ्रू ना हो, इतना महीन और इतना बारीक ना हो कि जिस्म के अंदर के हिस्से या अंदर की चीजें नजर आए। फिर दूसरी चीज क्या है? कि मौसम के असरात से बचाने वाला हो, गर्मी में गर्मी से किफायत करे और सर्दी में सर्दी से। अगली बात क्या है? कि इस्तेताद के मुताबिक हो। नंबर अगले खुद ही डालते जाइए, मैं लफ्ज बोलती जाऊंगी। मौका और महल के मुताबिक हो, ये भी एक बंदे को गुण आना चाहिए कि लिबास मौका महल के मुताबिक पहने। लिबास से अल्लाह के फजल का इजहार हो, हद से तजावज करने वाला ना हो, तकब्बुर में मुबतला करने वाला ना हो, रिया या नमूदो नुमाइश मकसूद ना हो। और बेहतरीन लिबास तकवा का लिबास है। औरत बाहर निकले तो खुशबू में रचा बसा हुआ ना हो और शोहरत के लिए ना पहने। मुसनद अहमद की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दुनिया में नामो नमूद और नुमाइश के लिए लिबास पहना, कल क्यामत के दिन अल्लाह ताला उसे जिल्लत का लिबास पहनाएगा। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। और एक आखिरी बात, औरतें मर्दों की मुशाबहत वाला और मर्द औरतों की मुशाबहत वाला ना पहने। कुछ चीज़ें दोनों में एक ही जैसी होती हैं, मसलन शलवार कमीज, औरत भी पहनते हैं मर्द भी पहनती हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई खास चीज जो मर्दों की मुशाबियत से है वो और दूसरी ना हो। एक और चीज है जो कुछ शरायत के साथ है, वो क्या है कि गैर मुस्लिमों से मुशाबियत का ना हो। तफसीला तो बाद में देखेंगे, इस वक्त तो हमें बात करनी है लिबासुत तकवा पे। कुरान पढ़ते वक्त इंसान के अंदर जो चीज बढ़ती है वो तकवा बढ़ता है। और याद रखिए कि जितना आपका तकवा बढ़ता जाता है उतना आप अपने लिबास के बारे में कॉन्शियस होते जाते हैं। पहले शऊर नहीं था, फिर शऊर आने लगता है, फिर एहसास होता है, फिर शर्मिंदगी आती है, फिर उस लिबास में उस होलिये में बाहर निकलना मुश्किल लगता है, और फिर एक वक्त आता है कि इंसान अपने आप को जितना छुपा ले उतना महफूज समझता है। मुझसे एक गैर मुस्लिम थी, उसने सवाल किया, कहने लगी कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ मुस्लिम जो है वो लोग सब देखते हैं बातें, ये ना सोचें कि उनको कुछ नहीं पता। कहने लगी कि सम लेडीज दे कवर देयर फेसेस, चेहरे पे निकाब करती हैं, कुछ जो है वो सिर्फ सर के बाल छुपाती हैं, कुछ नीचे गाउन भी पहनती हैं, कुछ सिर्फ शलवार कमीज में है, और कुछ बिल्कुल हमारे जैसा लिबास पहनती हैं, तो तुम बताओ कि ये फर्क क्यों है। तो मैंने उसको यही जवाब दिया था, मैंने कहा दीज ऑल आर स्टेप्स, जिसके अंदर जितना ईमान बढ़ता जाता है ना वो उतना फॉलो करता जाता है। हर थोड़ी चीज से ज्यादा चीज बेहतर है, हर ज्यादा से उससे ज्यादा बेहतर है। अगर बीच के मरहले हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उसको मंजिल बना लिए कि बस यही है मेरी आखिरी मंजिल, तो फिर दुरुस्त नहीं। हर बंदे को, हम में से हर एक कहने वाले और सुनने वाले को हर वक्त अपने बारे में इस चीज का एहसास रखना चाहिए कि हम कैसे और किस तरह से इसको निकलते हैं। यहां सिर्फ लिबास की बात है, इसलिए घर से बाहर निकलने की बात नहीं करूंगी, ये अपनी जगह पे आएगी। एक दुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई लिबास पहनते वक्त, वो क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा ऊरिया बिही औरती व अतजम्मलु बिही फी हयाती। ये इसलिए आपको बताना चाह रही हूँ कि इन आयतों में जो दो मकसद हैं लिबास के, वो इस दुआ में भी हैं, और जब हम शऊर के साथ ये दुआ पढ़ेंगे तो एक दफ़ा ज़रूर अपने लिबास के ऊपर नज़र रखेंगे कि क्या हमारा लिबास ये तकाजे पूरे करता है। दुआ का तर्जमा क्या है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे वो चीज़ पहनाई जिससे मैं अपनी शर्मगाह को छुपाऊँ और जिंदगी में जीनत हासिल करूं। तिर्मिजी की ये रिवायत है, तो इससे क्या पता चला कि लिबास खूबसूरत भी हो सकता है। एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए कि सिर्फ खूबसूरती के नाम पे चुभने वाले कपड़े पहन ले, और बिल्कुल ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मौका हो शादी का और आप ऐसे कपड़ों में जाएं कि घर वाला सोचे कि आपको वहां आने की कोई खुशी नहीं हुई।